अध्याय 8 शोध डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन। शोध डिज़ाइन के अर्थ एवं विशेषताएं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन। सामाजिक शोध सोशल रिसर्च में शोध डिज़ाइन की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान में शोध डिज़ाइन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक विज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइंस है। किसी भी तरह के शोध, चाहे वह प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल हो या अप्रयोगात्मक नॉन एक्सपेरिमेंटल हो, का परिणाम रिजल्ट एवं निष्कर्ष कंक्लूजन शोध डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन पर निर्भर करता है। यदि शोध डिज़ाइन दोषपूर्ण फॉल्टी होगा तो वैसी परिस्थिति में शोध के परिणाम तथा निष्कर्ष पर निर्भरता डिपेंडेबिलिटी तथा उसकी वैधता वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। पैराग्राफ चेंज। शोध डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसी योजना प्लानिंग होती है जिससे यह पता चलता है कि शोध में कितने स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं, उनके कितने स्तर हैं, बहिरंग चरों एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को नियंत्रित करने के लिए किन किन प्रविधियों का उपयोग किया गया है, तथा आश्रित चरों डिपेंडेंट वेरिएबल्स या डिपेंडेंट वेरिएबल का मापन किस रूप में हुआ है। स्पष्ट है कि शोध डिज़ाइन शोध समस्याओं रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में उत्तर प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक परियोजना प्लान या रूपरेखा आउटलाइन है। कर्लिंगर 1986 ने शोध डिज़ाइन की परिभाषा कुछ इसी अर्थ में देते हुए कहा है, अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, शोध डिज़ाइन अनुसंधान करने के लिए बनी कोई एक ऐसी परियोजना प्लान तथा संरचना स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा शोध समस्याओं का उत्तर प्राप्त किया जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कर्लिंगर द्वारा दी गई इस परिभाषा का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें शोध डिज़ाइन के स्वरूप के बारे में निम्नांकित तथ्य या विशेषताएं प्राप्त होती हैं। पैराग्राफ चेंज। एक, शोध डिज़ाइन एक परियोजना प्लान है जिसे शोधकर्ता द्वारा इस ढंग से तैयार किया जाता है कि इसमें प्राकल्पना लेखन हाइपोथेसिस राइटिंग तथा उसका संक्रियात्मक आशय ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन से लेकर आंकड़ों का अंतिम विश्लेषण फाइनल एनालिसिस तक की रूपरेखा निहित होती है। इससे स्पष्ट है कि शोध डिज़ाइन शोध के विषयों के बारे में एक अनुभव सिद्ध या आनुभाविक सबूत एम्पिरिकल एविडेंस प्रदान करने की एक वैज्ञानिक परियोजना साइंटिफिक प्लान है। पैराग्राफ चेंज। तो शोध डिज़ाइन मात्र एक परियोजना प्लान नहीं है बल्कि एक ऐसी संरचना स्ट्रक्चर भी है जिसमें शोध में सम्मिलित किए गए चरों वेरिएबल्स के संबंधों को अध्ययन करने का एक विशेष मॉडल होता है। दूसरे शब्दों में शोध डिज़ाइन शोध की एक ऐसी संरचना स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा शोध में प्रयुक्त होने वाले चरों की संख्या, उनके स्तर लेवल या मान वैल्यूज तथा उनके उपयोग हेतु की जाने वाली सभी संक्रियाओं ऑपरेशंस के एक प्रतिमान प्रस्तुत किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। तीन, शोध डिज़ाइन शोध की एक ऐसी परियोजना प्लान तथा संरचना स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम का उपयुक्त उत्तर अप्रोप्रिएट आंसर तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में शोध डिज़ाइन शोधकर्ता को शोध के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने में, अर्थात शोध प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में मदद करता है। एक उदाहरण, एन एग्जाम्पल, शोध डिज़ाइन की उपरोक्त विशेषताओं की व्याख्या में और अधिक स्पष्टता हम एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार ला सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता किसी पार्ट लेसन को सीखने की क्षमता पर पाठ की सार्थकता मीनिंगफुलनेस का क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करना चाहता है। इस अध्ययन में पाठ को सीखने की क्षमता एबिलिटी टू लर्न एक आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल है तथा पाठ की सार्थकता मीनिंगफुलनेस एक स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस शोध के सबसे सरलतम डिज़ाइन के अनुसार पाठ की सार्थकता में जोड़तोड़ मैनिपुलेशन दो अवस्थाओं में बांटकर किया जाएगा। एक अवस्था में सार्थक शब्दों को सीखने के लिए दिया जाएगा तथा दूसरी अवस्था में निरर्थक शब्दों या पदों को सीखने के लिए दिया जाएगा। प्राकल्पना यह होगी कि व्यक्ति सार्थक शब्दों को निरर्थक शब्दों की तुलना में जल्द सीख लेता है। यादृच्छिक ढंग रैंडमली चयन किए गए प्रयोज्यों को दोनों अवस्थाओं में यादृच्छिक ढंग से आवंटित रैंडमली असाइंड कर दिया जाएगा। फिर प्रत्येक अवस्था में प्रयोज्यों जिनकी संख्या दोनों अवस्थाओं में बराबर बराबर होगी द्वारा पाठ को सीखने में लिया गया समय तथा की गई त्रुटि एरर का माध्य मीन याद किया जाएगा और दोनों की तुलना करके यह जानकारी प्राप्त की जाएगी कि उन दोनों में सार्थक समान अंतर है या नहीं। पैराग्राफ चेंज। उपयुक्त शोध डिजाइन में तीनों विशेषताओं का समावेश है। यह डिजाइन पूरे शोध की एक परियोजना इसलिए है क्योंकि इसमें प्राकल्पना लेखन से लेकर उसके अंतिम विश्लेषण तक की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसे पूरे शोध की संरचना इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें स्वतंत्र चर के दो स्तर या अवस्था लिए गए हैं और प्रत्येक अवस्था में प्रयोज्यों को यादृच्छिक ढंग से आवंटित करके एक अवस्था में उनके व्यवहारों का अध्ययन स्वतंत्र चर के अभाव या उसके शून्य मूल्य पर तथा दूसरी अवस्था में उसके व्यवहारों का अध्ययन स्वतंत्र चर के उच्चतम मूल्य पर किया गया है। शोर डिजाइन में यादृक्षीकरण रैंडमाइजेशन सम्मिलित करने का मूल उद्देश्य बहिरंग चरों एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को नियंत्रित करना होता है। इस शोध डिजाइन के सफलीभूत होने पर निश्चित रूप से शोधकर्ता अपनी शोध समस्या के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है अर्थात सीखने की प्रक्रिया पाठ की सार्थकता से तेजी से होती है या मंदित रिटार्टेड हो जाती है। शोध डिजाइन के उद्देश्य पर्पसेस ऑफ रिसर्च डिजाइन। शोध डिजाइन के मुख्य दो उद्देश्य पर्पसेस होते हैं और शोध प्रश्नों रिसर्च क्वेश्चंस के सही उत्तर ढूंढना टू प्रोवाइड करेक्ट आंसर्स टू द रिसर्च क्वेश्चंस तथा ब प्रसरण को नियंत्रित करना टू कंट्रोल वेरिएंस। इन दोनों तरह के उद्देश्यों का वर्णन निम्नांकित है। अ शोध प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढना टू प्रोवाइड करेक्ट आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चंस। शोधकर्ता शोध डिजाइन के आधार पर शोध समस्याओं या प्रश्नों का एक वैलिड तथा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। इस तरह से शोध डिजाइन द्वारा शोधकर्ता शोध समस्याओं रिसर्च प्रॉब्लम्स के समाधान से संबंधित कुछ अनुभव सिद्ध सबूतों एम्पिरिकल एविडेंसेस को जुटाता है तथा शोधकर्ता को एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने में मदद करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि शोध डिजाइन रिसर्च डिजाइन द्वारा यह कार्य कैसे संपन्न होता है। वास्तव में शोध डिजाइन शोध रिसर्च में सम्मिलित किए गए चरों वेरिएबल्स के संबंधों को अध्ययन करने की एक परियोजना प्लान होती है। एक तरह से शोध डिजाइन शोधकर्ता को यह बतलाता है कि उसे किस ढंग का प्रेक्षण ऑब्जर्वेशंस करना चाहिए कैसे करना चाहिए तथा प्रेक्षण से प्राप्त परिमाणात्मक तथ्यों क्वांटिटेटिव फैक्ट्स का विश्लेषण एनालिसिस कैसे करना चाहिए आदि आदि। एक वैज्ञानिक शोध डिजाइन यह भी बतलाता है कि प्रेक्षणों ऑब्जर्वेशंस की संख्या कितनी होनी चाहिए कौन चर सक्रिय चर एक्टिव वेरिएबल है तथा कौन चर गुण चर एट्रीब्यूटिव वेरिएबल है तथा सक्रिय चर में जोड़ तोड़ कैसे किया जा सकता है आदि। इस तरह से शोध डिजाइन शोधकर्ता के प्रेक्षण ऑब्जर्वेशंस तथा विश्लेषण एनालिसिस की प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करता है और उन्हें शोध प्रश्नों का अंतिम सही एवं वैध हल ढूंढने में मदद करता है। पैराग्राफ चेंज। प्रसरण को नियंत्रित करना टू कंट्रोल वेरिएंसेस। शोध डिजाइन का तकनीकी उद्देश्य टेक्निकल पर्पस विभिन्न तरह के प्रसरण वेरिएंस को नियंत्रित करना होता है। शोध डिजाइन का यह एक उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण बतलाया गया है क्योंकि यदि इस उद्देश्य को प्राप्त करने में कोई शोध डिजाइन असमर्थ है तो वह अपने पहले उद्देश्य की भी प्राप्ति सही अर्थों में नहीं कर पाता है। शोध डिजाइन एक नियंत्रण प्रक्रिया कंट्रोल मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है। इस नियंत्रण प्रक्रिया के रूप में शोध डिजाइन निम्नांकित तीन तरह के प्रसरणों वेरिएंसेस के क्रमबद्धीकरण सिस्टमाइजेशन पर बल डालता है। क प्रयोगात्मक प्रसरण की उच्चतम सीमा प्राप्त करना मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। ख बहिरंग प्रसरण को नियंत्रित करना कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएंस। ग त्रुटि प्रसरण को कम से कम करना मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस। नियंत्रण प्रक्रिया कंट्रोल मैकेनिज्म के इन तीन पहलुओं का वर्णन निम्नांकित है। क प्रयोगात्मक प्रसरण की उच्चतम सीमा मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस शोध डिजाइन का एक महत्वपूर्ण तकनीकी उद्देश्य शोध में प्रयोगात्मक प्रसरण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना होता है। सच पूछा जाए तो प्रयोगात्मक प्रसरण को बढ़ाना शोध डिजाइन के उद्देश्य के पीछे छिपा एक सांख्यिकीय सिद्धांत प्रिंसिपल है। प्रयोगात्मक प्रसरण एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस के तात्पर्य आश्रित चर में उत्पन्न किए गए वैसे प्रसरण से होता है जिसे शोधकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उत्पन्न करता है। प्रायः शोधकर्ता यह कोशिश करता है कि वह अपने शोध में प्रयोगात्मक प्रसरण को उच्चतम सीमा तक बढ़ा दे ताकि उस शोध से अधिक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तथा वैध आंकड़ा प्राप्त हो सके। प्रयोगात्मक प्रसरण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिए शोधकर्ता इस ढंग का शोध डिजाइन तैयार करता है जिसमें विभिन्न प्रयोगात्मक अवस्थाएं एक दूसरे से अधिक मात्रा में भिन्न रह सके। प्रयोगात्मक प्रसरण को उच्चतम सीमाएं बढ़ाने के इस सांख्यिकीय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक शोध ज्ञान रिसर्च कॉन्सेप्ट की अभिव्यक्ति इस प्रकार की जा सकती है। शोध को संचालित कंडक्ट करने का डिजाइन इस ढंग का हो ही उसकी प्रयोगात्मक अवस्थाएं यथासंभव एक दूसरे से भिन्न हो। डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ रिसर्च शुड बी सच दैट द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आर एज डिफरेंट एज पॉसिबल ब्रैकेट क्लोज पैराग्राफ चेंज। शोध डिजाइन के उपयुक्त सांख्यिकीय सिद्धांत स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल अर्थात प्रयोगात्मक प्रसरण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के सिद्धांत को एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि रोशनी इल्यूमिनेशन के स्तर का प्रभाव व्यक्ति की कार्यक्षमता वर्क एफिशिएंसी पर क्या पड़ता है। इस अध्ययन में रोशनी इल्यूमिनेशन एक स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उदाहरण है तथा कार्यक्षमता एक आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल का उदाहरण है। मान लिया जाए कि शोधकर्ता रोशनी के तीन स्तरों यानी तीन प्रयोगात्मक अवस्थाओं के प्रभाव का अध्ययन करने का निश्चय करता है। रोशनी का उच्च स्तर, रोशनी का मध्य स्तर तथा रोशनी का निम्न स्तर। ये तीन प्रयोगात्मक अवस्थाएं सार्थक रूप से जितनी ही एक दूसरे से भिन्न होंगी आश्रित चर अर्थात कार्यक्षमता में उतना ही स्पष्ट अंतर होगा और फलस्वरूप आश्रित चर में प्रयोगात्मक प्रसरण उतना ही अधिक होगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि शोधकर्ता रोशनी के तीन स्तर के बजाय 10 स्तर के प्रभाव का अध्ययन करने का निश्चय करता है। ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक है कि इन 10 स्तरों में रोशनी की मात्रा में आपसी अंतर थोड़ा थोड़ा होगा। ऐसी परिस्थिति में आश्रित चर में जो प्रयोगात्मक प्रसरण उत्पन्न होगा वह पहले वाले शोध डिजाइन से उत्पन्न प्रयोगात्मक प्रसरण से काफ़ी कम होगा। अतः दूसरे शोध डिजाइन को पहले शोध डिजाइन से श्रेष्ठ सुपीरियर नहीं माना जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। ख बहिरंग प्रसरण को नियंत्रित करना टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएंस। शोध डिजाइन का दूसरा प्रमुख तकनीक उद्देश्य बहिरंग चरों एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को नियंत्रित करना होता है ताकि उससे उत्पन्न प्रसरण वेरिएंस की मात्रा पर रोक लगाई जा सके। बहिरंग प्रसरण एक्सट्रेनियस वेरिएंस के नियंत्रण से सभी अवांछित अनवांटेड प्रसरण नियंत्रित हो जाते हैं जो वैसे चरों वेरिएबल्स के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं जिनके अध्ययन में शोधकर्ता की कोई रुचि नहीं होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि शोध में बहिरंग चरों एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का नियंत्रण कैसे किया जाता है। विशेषज्ञों ने सामाजिक शोध सोशल रिसर्च में बहिरंग चरों को नियंत्रित करने की निम्नांकित 6 विधियों को अधिक महत्वपूर्ण बतलाया है। एक विलोपन एलिमिनेशन। शोध में या प्रयोग में बहिरंग चरों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे प्रयोगात्मक परिस्थिति से निष्कासित कर दिया जाए ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका प्रभाव अपने आप ही विलोपित हो जाए। उदाहरण स्वरूप यदि प्रयोग ऐसा है जिसमें बाहरी आवाज़ एक बहिरंग चर है तो हम प्रयोगशाला को यदि ध्वनि रोधी बना देते हैं तो वह बहिरंग चर अपने आप ही प्रयोगात्मक परिस्थिति से विलोपित हो जाएगा और तब उससे उत्पन्न होने वाला प्रसरण अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगा। उसी तरह से मान लिया जाए कि कोई प्रयोगकर्ता पाठ की लंबाई का प्रभाव सीखने की गति पर क्या पड़ता है जानने के लिए प्रयोग करता करना चाहता है। इस प्रयोग में पाठ की अर्थपूर्णता एक महत्वपूर्ण बहिरंग चर होता है, क्योंकि इसमें अंतर होने से पाठ के सीखने की गति सीधे प्रभावित होती है। अतः पाठ की अर्थपूर्णता को नियंत्रित करने के लिए शोधकर्ता मात्र निरर्थक पाठ जैसे निरर्थक पद नॉनसेंस सिलेबस का ही प्रयोग कर सकता है। ऐसा करने से चूंकि पाठ की अर्थपूर्णता अपने आप विलोपित हो जाती है, अतः इससे उत्पन्न प्रसारण भी नियंत्रित हो जाता है। 2. स्थिरता कंसिस्टेंसी। जब बहिरंग चरों को शोध या प्रयोगात्मक परिस्थिति में विलोपित करके नियंत्रित करना संभव नहीं होता है, तो उसके मान को सभी अवस्थाओं में एक समान रखकर अर्थात उसमें स्थिरता लाकर हम उसके प्रभाव को नियंत्रित कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में नियंत्रण की इस विधि में सभी प्रयोज्यों को बहिरंग चर के एक ही मान से सामना कराया जाता है, ताकि उसका पड़ने वाला प्रभाव सभी प्रयोज्यों पर एक समान हो। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई प्रयोग ऐसा है जिसमें 10 प्रयोज्य हैं, तो उन सभी को एक ही कमरे में बैठाकर यदि प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कुछ बहिरंग चर जैसे कमरे की दीवार का रंग, कमरे में रखे फर्नीचर तथा कमरा का अन्य तड़क भड़क का प्रभाव सभी प्रयोज्यों पर एक समान पड़ेगा। अतः इन चरों से आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाला परिवर्तन सभी प्रयोज्यों के एक समान होगा। फलतः इनके प्रभाव से शोध के अंतिम परिणाम में कोई विभेद डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। परंतु कुछ प्रयोज्यों को एक कमरे में तथा कुछ प्रयोज्यों को दूसरे कमरे में बैठाकर जो प्रयोग किया जाता है, तो संभव है उपयुक्त बहिरंग चर इन दोनों अवस्थाओं के लिए समान या समरूप कांस्टेंट न हो, तथा जब उससे आश्रित चर में इस विभिन्नता के कारण अंतर हो सकता है। उसी तरह कुछ जैविक चर ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल जैसे के रूप में उपस्थित होते हैं। ऐसे जैविक बहिरंग चरों को नियंत्रित करने के लिए शोधकर्ता सिर्फ उन प्रयोज्यों को चुनता है जो विशेष बहिरंग चर पर समान हो। जैसे यदि सभी प्रयोज्य एक ही यौन सेक्स के हो, अर्थात पुरुष हो या स्त्री, तो स्वभावतः यौन का प्रभाव अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। उसी ढंग से यदि सभी प्रयोज्यों की उम्र सीमा समान हो, तो 14 से 16 वर्ष के उम्र के ही प्रयोज्यों को अध्ययन में रखा जाए, तो उससे उम्र का प्रभाव अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। उसी ढंग से बुद्धि इंटेलिजेंस के भी प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि शोध ऐसा है जिसमें 2 या 2 से अधिक समूह भाग लेंगे, तो प्रत्येक समूह में समान बुद्धि लब्धि IQ के प्रयोज्यों को रखकर सुमेलित समूह मैच्ड ग्रुप तैयार कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया को मिलान मैचिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। उसी तरह से उपकरण एपरेटिस से संबंधित बहिरंग चरों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रयोज्यों की अनुक्रियाओं को एक ही उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाए तथा सभी प्रयोगात्मक अवस्थाओं में समरूप उपकरण का प्रयोग किया जाए। ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ता विश्वास के साथ यह कह सकता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाला परिवर्तन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किए गए जोड़ तोड़ के फलस्वरूप हुआ है। पैराग्राफ चेंज 3 संतुलन बैलेंसिंग। जब शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता के लिए बहिरंग चरों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रयोगात्मक अवस्थाओं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को एक समान या स्थिर कांस्टेंट रखना संभव नहीं हो पाता है, तो वह संतुलन के सहारे इन चरों के प्रभाव को नियंत्रित करता है। संतुलन का प्रयोग निम्नांकित 2 परिस्थितियों में किया जाता है। क, जब शोधकर्ता बहिरंग चरों की पहचान करने में समर्थ हो, तथा ख, जब शोधकर्ता बहिरंग चरों की पहचान करने के उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाता हो। पैराग्राफ 3 जहाँ तक पहली परिस्थिति का प्रश्न है, उसमें शोधकर्ता बहिरंग चरों की संख्या तथा उसके स्वरूप के बारे में कुछ नहीं सोचता है, बल्कि वह प्रयोज्यों के सभी समूहों के साथ समान ढंग से विवेचन करता है। परंतु स्वतंत्र चर पर प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह का विवेचन अलग ढंग से करता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो भी बहिरंग चर प्रयोग के दौरान क्रियाशील होते हैं, वे प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह को समान ढंग से प्रभावित करते हैं, अतः उनका प्रभाव अपने आप ही संतुलित होकर तटस्थ हो जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले परिवर्तन का कारण मात्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किया गया जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन ही रह जाता है। इसे एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है। मान लिया जाए कि किसी प्रयोग में दो बहिरंग चर हैं तथा दो समूह अर्थात एक प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है तथा दूसरा नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप है, और यह भी मान लिया जाए कि एक इस अध्ययन में एक स्वतंत्र चर है तथा एक आश्रित चर डिपेंड। दो बहिरंग चरों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उसके प्रभाव को समान रूप से प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल तथा नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप पर पड़ने दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में बहिरंग चरों का प्रभाव अपने आप संतुलित बैलेंस्ड होकर समाप्त हो जाएगा, अर्थात उसका कोई विभेदी प्रभाव डिस्क्रिमिनेटिंग इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं पड़ेगा। इसी तथ्य को चित्र दो में दिखलाया गया है। पैराग्राफ चेंज, चित्र दो से स्पष्ट है कि दो बहिरंग चरों का प्रभाव जो कि दोनों समूह अर्थात प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह पर समान रूप से पड़ रहा है तथा मात्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव ही इस दोनों समूहों पर अलग अलग ढंग से पड़ रहा है, अतः डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाला परिवर्तन स्पष्टतः इंडिपेंडेंट वेरिएबल में उनमें किए गए जोड़ तोड़ का ही परिणाम माना जा सकता है। पैराग्राफ चेंज, नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप के माध्यम से बहिरंग चरों के प्रभाव को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण पूर्व कल्पना यह होती है कि प्रत्येक समूह के सभी प्रयोज्य प्रारंभिक तौर पर तुल्य इक्विवेलेंट हैं। पैराग्राफ चेंज, संतुलन की दूसरी परिस्थिति वह होती है जिसमें शोधकर्ता को यह पता होता है कि इस प्रयोग में कौन कौन बहिरंग चर है तथा उसकी संख्या कितनी है। इन चरों को नियंत्रित करने के लिए वह विशेष कदम उठाता है। उदाहरण स्वरूप, मान लिया जाए कि शोधकर्ता को यह पता अमुक प्रयोग या शोध में यौन सेक्स एक बहिरंग चर है। इस चर को नियंत्रित करने के लिए सबसे उत्तम तरीका यह है कि सभी प्रयोज्यों का यौन चाहे पुरुष हो या स्त्री एक ही रखा जाए। परंतु यदि अध्ययन ऐसा है जिसमें दोनों यौन के प्रयोज्यों को लिया जाना आवश्यक है तो शोधकर्ता को ऐसी परिस्थिति में विशेष कदम उठाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता प्रयोग के सभी समूहों में दोनों यौनों यौन के प्रयोज्यों की संख्या बराबर बराबर करके यौन सेक्स के प्रभाव को संतुलित बैलेंस्ड कर सकता है। इस संतुलित अवस्था में डिपेंडेंट वेरिएबल पर यौन का प्रभाव यदि कुछ पड़ता हो तो समान रूप से पड़ेगा, अतः डिपेंडेंट वेरिएबल पर यौन के प्रभाव से होने वाला विशेष अंतर सभी समूहों के लिए एक समान होगा, जिससे प्रयोग के अंतिम परिणाम की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से हो पाएगी। इसी ढंग से शोधकर्ता उम्र जैसे बहिरंग चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल के प्रभाव को प्रत्येक समूह में प्रत्येक उम्र वर्ग से समान प्रयोज्यों को लेकर संतुलित कर सकता है। पैराग्राफ चेंज, चार, प्रतिसंतुलन काउंटर बैलेंसिंग। प्रतिसंतुलन का उपयोग करके बहिरंग चरों के प्रभाव को उन प्रयोगों या शोधों में नियंत्रित किया जाता है जिनमें एक से अधिक प्रयोगात्मक अवस्थाएं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती हैं और प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक प्रयोज्य सब्जेक्ट कार्यरत रहता है। इस तरह के प्रयोज्य में जहाँ प्रत्येक प्रयोज्य प्रत्येक प्रयोगात्मक अवस्था में कार्यरत रहता है, सामान्यतः दो तरह के क्रम प्रभाव ऑर्डर इफेक्ट जो बहिरंग चर कहलाते हैं उत्पन्न होते हैं। अभ्यास प्रभाव प्रैक्टिस इफेक्ट तथा थकान प्रभाव टैक्टिक इफेक्ट। ऐसा संभव है कि जब प्रयोज्य प्रयोगात्मक अवस्था ए से प्रयोगात्मक अवस्था बी में कार्य करना प्रारंभ करे तो अभ्यास प्रभाव प्रैक्टिस इफेक्ट के कारण प्रयोगात्मक अवस्था बी में उसका निष्पादन परफॉर्मेंस अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका प्राप्तांक स्कोर पहले से अधिक हो जाए, या यह भी संभव है कि थकान प्रभाव फैटिक इफेक्ट के कारण उसका निष्पादन प्रयोगात्मक अवस्था बी में पहले की अपेक्षा कम हो जाए। प्रतिसंतुलन काउंटर बैलेंसिंग का उपयोग इन दोनों तरह बहिरंग चरों एक्सट्रानियस वेरिएबल्स अर्थात अभ्यास प्रभाव प्रैक्टिस इफेक्ट तथा थकान प्रभाव फैटिक इफेक्ट को संतुलित कर उसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रतिसंतुलन द्वारा इन दोनों तरह के प्रभावों का प्रभाव प्रत्येक प्रयोगात्मक अवस्था में समान रूप से पड़ता है, अतः प्रभाव अपने आप नियंत्रित हो जाता है। पैराग्राफ चेंज उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रति संतुलन काउंटर बैलेंसिंग का बहिरंग चरों के नियंत्रण के रूप में वही प्रयोग किया जाना चाहिए जब प्रयोगात्मक अवस्था ए से प्रयोगात्मक अवस्था बी में होने वाला अंतरण ट्रांसफर प्रतिसम सिमेट्रिकल न होकर अप्रतिसम होता है। प्रतिसम अंतरण सिमेट्रिकल ट्रांसफर तथा अप्रतिसम अंतरण का एक एक उदाहरण तालिका एक में दिया गया है। प्रणव जी, तालिका एक से स्पष्ट है कि इसमें प्रयोज्य सब्जेक्ट्स की कुल संख्या n इज इक्वल टू 10 है, जिसे दो भागों में बराबर बराबर की संख्या में बांटा गया है। प्रत्येक भाग के प्रत्येक प्रयोज्य को दोनों प्रयोगात्मक अवस्थाओं ए तथा बी में कार्यरत रखा गया है। तालिका से स्पष्ट है कि जब प्रयोज्यों को ए अवस्था में पहले रखा गया तो उसे डिपेंडेंट वेरिएबल पर 7 प्राप्तांक आया तथा बाद के बी अवस्था में 9 प्राप्तांक आया। दोनों का अंतर 9-7=2 आया। दूसरी तरफ बाकी आधे प्रयोज्यों का प्राप्तांक ए अवस्था में 4 तथा बी अवस्था में 6 आया, अर्थात यहाँ भी अंतर 6-4=2 का है। अतः दोनों समूहों के लिए अवस्था ए से बी में प्राप्तांक का अंतर 2-2 है। यह अस्पष्टता एक प्रतिसम अंतरण सिमेट्रिकल ट्रांसफर का उदाहरण है, परंतु तालिका के दाएं कोने में अप्रतिसम अंतरण को दिखलाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि प्रयोज्यों के आधे समूह द्वारा ए तथा बी में 2 प्राप्तांक का अंतर है, परंतु बाकी आधे प्रयोज्यों के लिए ए से बी में 4 प्राप्तांक का अंतर है, जो स्पष्टतः अप्रतिसम अंतरण असिमेट्रिकल ट्रांसफर को बदला रहा है। प्रति संतुलन काउंटर बैलेंसिंग का उपयोग ऐसी ही परिस्थितियों में किया जाता है जहां अप्रतिसम अंतरण सिमेट्रिकल ट्रांसफर की संभावना होती है। पैराग्राफ चेंज प्रति संतुलन द्वारा किस ढंग से अभ्यास प्रभाव तथा थकान प्रभाव जैसे बहिरंग चरों का नियंत्रण होता है, इसे एक उदाहरण द्वारा एक प्रकार समझाया जा सकता है। मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता परिणाम ज्ञान का प्रभाव रेखा आरेखण कार्य पर क्या पड़ता है यह अध्ययन करना चाहता है। यह भी मान लिया जाए कि इसके लिए वह 10 प्रयोज्यों का यादृच्छिक ढंग से रैंडमली चयन सिलेक्शन करता है तथा इस अध्ययन में 2 प्रयोगात्मक अवस्थाएं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस ली गई हैं। एक प्रयोगात्मक अवस्था वह है जिसमें प्रयोज्यों को अपने कार्य का परिणाम ज्ञान नॉलेज ऑफ रिजल्ट दिया जाता है तथा दूसरी प्रयोगात्मक अवस्था वह है जिसमें प्रयोज्यों को अपने कार्य का परिणाम ज्ञान नहीं दिया जाता है। इस प्रयोग में स्पष्ट है कि चूंकि प्रयोज्यों का एक ही समूह दोनों अवस्थाओं अर्थात ए एवं बी में कार्यरत है, अतः अभ्यास प्रभाव प्रैक्टिस इफेक्ट तथा थकान प्रभाव फैटिक इफेक्ट हो सकते हैं। इन दोनों तरह के बहिरंग चरों को नियंत्रित करने का एक नमूना तालिका 2 में प्रस्तुत किया जा गया है। पैराग्राफ चेंज तालिका 2 से स्पष्ट है कि दोनों प्रयोगात्मक अवस्थाएं अर्थात ए और बी प्रत्येक प्रयोज्यों को सामान्य संख्या अर्थात 2-2 बार की दी गई है तथा प्रत्येक अवस्था समान संख्या में प्रत्येक सत्र सेशन में रखी गई है। इसके अलावा प्रत्येक अवस्था एक दूसरे से आगे एवं पीछे समान संख्या में दी गई है। इस तरह से स्पष्ट है कि प्रति संतुलन के लिए निम्नांकित 3 नियमों प्रिंसिपल्स का पालन किया जाना आवश्यक है। ए प्रत्येक प्रयोगात्मक अवस्था प्रत्येक प्रयोज्य को समान संख्या में दी जानी चाहिए। ईच एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मस्ट बी प्रेजेंटेड टू ईच सब्जेक्ट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। बी प्रत्येक प्रयोगात्मक अवस्था की संख्या प्रत्येक व्यास सत्र में एक समान होनी चाहिए। ईच एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस मस्ट अकर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स एट ईच प्रैक्टिस सेशन। सी प्रत्येक प्रयोगात्मक अवस्था एक दूसरे के आगे और पीछे समान रूप से हो। ईच एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मस्ट प्रिसीड एंड फॉलो ऑल अदर कंडीशंस ऑन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। रफ चेंज अंत में हम छात्रों को प्रति संतुलन काउंटर बैलेंसिंग तथा संतुलन बैलेंसिंग में अंतर भी बता देना उचित समझते हैं, क्योंकि दोनों में समानता अधिक होने से छात्र इन दोनों को एक ही समझने की भूल कर सकते हैं। प्रति संतुलन काउंटर बैलेंसिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ प्रत्येक प्रयोज्य सब्जेक्ट को एक से अधिक प्रयोगात्मक अवस्थाओं में कार्यरत रहना पड़ता है और जहाँ प्रयोगकर्ता का प्रयास यह रहता है कि क्रम प्रभाव ऑर्डर इफेक्ट अर्थात अभ्यास प्रभाव प्रैक्टिस इफेक्ट तथा थकान प्रभाव फैटिक इफेक्ट का प्रभाव सभी प्रयोगात्मक अवस्थाओं में समान रूप से वितरित हो ताकि इसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई विशिष्ट अंतर न उत्पन्न कर दे। संतोलन का उपयोग वैसी परिस्थिति में किया जाता है जहां प्रत्येक प्रयोज्य को किसी एक ही अवस्था का विवेचन ट्रीटमेंट मिलता है अर्थात प्रत्येक प्रयोज्य को किसी एक ही अवस्था में रखा जाता है परंतु बहिरंग चरों के प्रभाव को समान रूप से सभी प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल एवं नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप पर पड़ने दिया जाता है। ऐसा करने से बहिरंग चरों का प्रभाव अपने आप संतुलित होकर प्रभावहीन हो जाता है। 5. बहिरंग चर को स्वतंत्र चर के रूप में बदलना। टू कन्वर्ट द एक्सट्रेनियस वेरिएबल इंटू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहिरंग चर के अवांछित प्रभाव अनवांटेड इफेक्ट को नियंत्रित करने का एक सीधा तरीका यह है कि प्रयोग या शोध में एक स्वतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में बदलकर उपयोग किया जाए। ऐसी अवस्था में बहिरंग चर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और साथ ही प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता डिपेंडेंट वेरिएबल पर इस चर के पड़ने वाले प्रभाव का भी विश्लेषण कर पाएगा। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता मध्य सागर या अल्कोहल का प्रभाव टाइपिंग की गति पर क्या पड़ता है यह देखना चाहता है। इसके लिए मान लिया जाए कि वह 20 प्रयोज्यों का चयन करता है जो समान उम्र एक ही यौन तथा सामान्य बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वेश्चन के हैं। इनमें से 10 प्रयोज्यों को अल्कोहल पीने के 2 घंटे बाद टाइपराइटर पर टाइप करने के लिए कहा जा सकता है। बाकी 10 प्रयोज्यों का दूसरा समूह बिना अल्कोहल लिए ही टाइपराइटर पर टाइप करने के लिए उसी समय बैठेगा। इस प्रयोगात्मक परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण बहिरंग चर टाइपराइटर का प्रकार है जिसे डिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात टाइपिंग की गति प्रभावित हो सकती है। सामान्यतः टाइपराइटर के 2 प्रकार होते हैं वैद्युत टाइपराइटर तथा मैनुअल टाइपराइटर। जिस समूह को पहले प्रकार के टाइपराइटर पर टाइप करने के लिए कहा जाएगा स्वभावतः उसकी टाइपिंग गति उस समूह की अपेक्षा जिसे दूसरे प्रकार का टाइपराइटर दिया जाएगा अधिक होगी। इस बहिरंग चर के प्रभाव का अर्थात टाइपराइटर के अंतर के प्रभाव को अध्ययन में एक स्वतंत्र चर के रूप में बदल कर नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रयोग के 2 उद्देश्य हो जाएंगे, पहला टाइपिंग गति पर अल्कोहल के प्रभाव का अध्ययन करना तथा दूसरा टाइपिंग गति पर टाइपराइटर के अंतरों के प्रभाव का अध्ययन करना। इस तरह से प्रयोग में अब 2 समूह अर्थात अल्कोहल पीने वाले समूह n=10 और अल्कोहल नहीं पीने वाले समूह n=10 की जगह पर 4 समूह हो जाएंगे जो निम्नांकित हैं। तरफ चेंज 2 समूह डिजाइन में प्रयोगकर्ता समूह ए तथा बी के माध्य मीन की तुलना करके एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। इस डिज़ाइन में अल्कोहल का पीना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइपिंग की गति डिपेंडेंट वेरिएबल है तथा टाइपराइटर का प्रकार अर्थात टाइपराइटर अंतर बहु प्रमुख बहिरंग है चर है। 4 समूह डिज़ाइन में प्रयोगकर्ता इस बहिरंग चर एक्सट्रेनियस को अर्थात टाइपराइटर के अंतर को भी एक स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में बदल देता है। इसके परिणाम स्वरूप अप्रयोगकर्ता को 4 माध्य ज्ञात करने होंगे, समूह ए का माध्य, समूह बी का माध्य, वैद्युत टाइपराइटर पर टाइप करने वाले समूह का माध्य तथा मैनुअल टाइपराइटर पर टाइप करने वाले समूह का माध्य। प्रथम माध्यों के अंतर द्वारा टाइपिंग गति पर अल्कोहल के प्रभाव का पता चलेगा तथा अंतिम 2 माध्यों में अंतर द्वारा टाइपिंग गति पर टाइपराइटर के अंतरों का पता चलेगा। पहला आप कीजिए 6. यादृच्छिकरण रैंडमाइजेशन बहिरंग चरों एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को नियंत्रित करने के उपरोक्त 5 विधियों में से किसी भी विधि का उपयोग जब किसी भी कारण से संभव नहीं हो तो वैसी परिस्थिति में उन चरों का नियंत्रण यादृच्छिकरण रैंडमाइजेशन की प्रविधि से किया जाता है। यादृच्छिकरण रैंडमाइजेशन एक ऐसी प्रविधि है जिसमें किसी भी जीव मनुष्य को अध्ययन समूह में चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि किसी वर्ग में 30 छात्र हैं जिनमें से 20 छात्रों का चयन यादृच्छिक ढंग से करना है। इसके लिए सबसे सरल तरीका यह होगा कि 30 छात्रों का नाम समान कागज़ के टुकड़े पर लिखकर उसे समान ढंग से मोड़ दिया जाए और सभी को एक बॉक्स या डिब्बे में रखकर तथा उसे हिला डुलाकर मिश्रित कर दिया जाए। इसके बाद उसमें से एक एक करके कागज़ 20 कागजों के टुकड़ों को निकाल लिया जाए। यह एक यादृच्छिककरण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जब भी प्रयोगकर्ता बॉक्स में कागज के किसी टुकड़े को चुनने का प्रयत्न करता है, उस समय बॉक्स में उपस्थित सभी टुकड़ों को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है। यादृच्छिककरण की अन्य विधियाँ भी हैं, जिनमें यादृच्छिककरण की संख्या की टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स का उपयोग एक महत्वपूर्ण विधि है। पैराग्राफ चेंज प्रयोग या शोध में यादृच्छिककरण रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया में सिर्फ प्रयोज्यों का ही चयन यादृच्छिककरण ढंग से नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें प्रयोगात्मक अवस्था एक्सपेरिमेंटल कंडीशन तथा नियंत्रित अवस्था कंट्रोल कंडीशंस में यादृच्छिक ढंग से आवंटित असाइन भी किया जाता है। यादृच्छिककरण की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने पर सभी ज्ञात तथा अज्ञात बहिरंग चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स प्रयोज्यों विभिन्न अवस्थाओं कंडीशंस को समान रूप से प्रभावित करते समझे जाते हैं, अतः उन सबों का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर यदि कुछ होता भी है तो समान रूप से होता है। इसका शुद्ध परिणाम यह होता है कि बहिरंग चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का प्रभाव अपने आप नियंत्रित हो जाता है। यादृच्छिककरण रैंडमाइजेशन की महत्ता पर टिप्पणी करते हुए मैकगिवन 1990 ने कहा है या अंडरडबल इनवर्टेड कॉमा यादृच्छिककरण का महत्व यह है कि बहिरंग प्रभावों को चाहे वे जैसे भी हो यादृच्छिक ढंग से प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित अवस्थाओं में बांट देता है, चाहे आप विशेष बहिरंग चरों को पहचान किए हों या न किए हों, इसका ऐसा ही संतुलनकारी प्रभाव होता है क्योंकि इसमें ज्ञात एवं अविशिष्ट बहिरंग चरों का प्रभाव सभी परिस्थितियों में समान रूप से वितरित हो जाता है। डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज यादृच्छिककरण रैंडमाइजेशन का एक उदाहरण हम इस प्रकार दे सकते हैं। मान लिया जाए कि किसी प्रयोग या शोध में प्रयोगकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि सीखने की प्रक्रिया सीखने की विभिन्न विधियों से किस प्रकार प्रभावित होती हैं। मान लिया जाए कि ऐसी विधियाँ तीन हैं जिनके प्रभाव का वह अध्ययन करना चाहता है, मेथड ए, मेथड बी तथा मेथड सी। इस अध्ययन में विधि मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तथा सीखने की प्रक्रिया डिपेंडेंट वेरिएबल है, एवं प्रयोज्यों के उम्र, यौन, बुद्धि, शैक्षिक स्तर, एजुकेशनल लेवल आदि बहिरंग चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है के उदाहरण है। मान लिया जाए कि प्रयोगकर्ता 30 छात्रों के समूह का यादृच्छिक ढंग से किसी विद्यालय से चयन करता है। इस अवस्था में तीन प्रयोगात्मक अवस्थाएं एक्सपेरिमेंटल है क्योंकि तीन विधियां हैं जिनके प्रभावों का अध्ययन करना है। अब प्रयोगकर्ता 30 यादृच्छिक ढंग से रैंडमली चुने गए छात्रों को तीन प्रायोगिक अवस्थाओं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में यादृच्छिक ढंग से आवंटित करके प्रयोग की कार्रवाई शुरू करेगा। प्रयोज्यों का चयन यादृच्छिक ढंग से करने से तथा उनका विभिन्न अवस्थाओं में यादृच्छिक आवंटन करने से प्रयोज्यों के बीच उम्र, यौन, बुद्धि, शैक्षिक स्तर आदि बहिरंग चरों से उत्पन्न व्यक्तिक विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस सामान्यतः साम्य हो जाता है और तब उनका प्रभाव आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल पर विशिष्ट रूप से नहीं पड़ पाता है। ग त्रुटि प्रसरण को कम से कम करना मैक्सिमाइजेशन ऑफ एरर वेरियंस शोध डिजाइन का तीसरा तकनीक कार्य प्रयोग या शोध में त्रुटि प्रसरण को कम से कम करना है। त्रुटि प्रसरण वैसे प्रसरण को कहा जाता है जो प्रयोग या शोध में वैसे कारकों से उत्पन्न होते हैं जो प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता के नियंत्रण से सामान्यतः बाहर होते हैं। इनमें से कुछ कारक फैक्ट ऐसे होते हैं जो प्रयोज्यों को व्यक्तिक विभिन्नता जैसे अविषमता, ध्यान, आवश्यकता आदि से संबंधित होते हैं तथा कुछ कारक ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्यतः मापन की त्रुटियों कहा जाता है। ऐसे कारकों में एक प्रयास से दूसरे प्रयास में होने वाली अनुक्रियाओं में विभिन्नता, प्रयोज्यों द्वारा अनुमान लगाना, ध्यान भंगता, थकान, मानसिक ऊब, क्षणिक स्मृति भूल, ट्रांजेंट लैप्सिस ऑफ मेमोरी आदि प्रधान है। त्रुटि प्रसरण के स्रोत सोर्स चाहे जो भी हो उसमें निम्नांकित दो विशेषताएं पाई जाती हैं। एक, त्रुटि प्रसरण एरर वेरिएंस का स्वरूप आत्मपूरक होता है क्योंकि इस ढंग का प्रसरण कभी धनात्मक होता है तो कभी नकारात्मक होता है। कभी धनात्मक तथा कभी नकारात्मक होने से इस ढंग की त्रुटि एक दूसरे का काट कैंसिलेशन करती है। शायद यही कारण है कि कई प्रयासों तक मापन करने में त्रुटियों को जो माध्य आता है वह प्रायः शून्य होता है। दो, त्रुटि प्रसरण का स्वरूप अपूर्व कथनीय होता है क्योंकि यह यादृच्छिक त्रुटियों पर आधारित होता है। अपूर्व कथनीय से तात्पर्य यह होता है कि प्रयोगकर्ता यह नहीं पहले से बतला सकता है कि अमुक प्रयास में त्रुटि की दिशा धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। पैराग्राफ चेंज। त्रुटि प्रसरण को कम करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि प्रयोग या शोध काफ़ी नियंत्रित अवस्था में किया जाए ताकि प्रयोगात्मक परिस्थिति में प्रसरण उत्पन्न करने वाले कारक अपने आप ही काफ़ी दबे रहें। इसके अलावा त्रुटि प्रसरण को कम करने का तरीका यह भी है कि प्रयोग में विश्वसनीय मापनी या विश्वसनीय परीक्षणों का उपयोग किया जाए। अगर मापनी या परीक्षण विश्वसनीय होंगे तो उनमें मिली प्राप्तांक में यादृच्छिक उतार चढ़ाव भी नहीं होगा और तब स्वभावतः त्रुटि प्रसरण कम से कम होगा। पैराग्राफ चेंज। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि शोध डिज़ाइन के जो तीन तकनीकी उद्देश्य हैं उनमें से पहला तथा दूसरा उद्देश्य तीसरे उद्देश्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इन उद्देश्यों के अलावा शोध डिज़ाइन का एक उद्देश्य यह भी है कि वह स्पष्ट शोध परिणाम अनएम्बिगस प्रदान कर सके तथा अस्तव्यस्तता कन्फाउंडिंग को प्रयोग से दूर कर सके। अस्तव्यस्तता से तात्पर्य एक ऐसी प्रयोगात्मक अवस्था से होता है जिसमें दो या दो से अधिक चर एक साथ परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह कहना मुश्किल हो जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन का कारण कौन सा विशेष चर है। स्पष्टतः चरों में अस्तव्यस्तता कन्फाउंडिंग से प्रयोग के परिणाम में अस्पष्टता बढ़ती है तथा स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में कारण परिणाम संबंध कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की निश्चितता व्याख्या नहीं हो पाती है। अतः यह एक शोध डिज़ाइन का उद्देश्य चरों में अस्तव्यस्तता कन्फाउंडिंग को दूर करना भी होता है।